तो उसको बिगाड़ने का नहीं होता, विचार करके देखती, विचार करके सब बतलाए, सब एक शांत हो गए, किसी को उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करना पड़ा, बाद ही बात नहीं। ऐसे वो तेजस्वी आचार्य थे। ऐसे ही जहां जहां उन्होंने प्रचार किया, ऐसे ही उन्होंने उनके शिष्यों को भी ऐसे प्रचार किया। हमारे गुरु महाराज जी को एक बार उन्होंने इलाहाबाद में प्रचार करने के लिए भेजा, वहां पर संगम में रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दी थी प्रयाग में, तो वहां पर उनको भेजा। हमारे गुरु जी उसमें ब्रह्मचारी सफेद कपड़े में थे, तो वहां पर वकीलों की एक बड़ी धार्मिक सभा हुई और उसमें यह लिखा गया, जैसे मायापुर से वैज्ञानिक पंडित श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी आए हैं, उसमें भाषण चारों काम सब लोग सुनने के लिए। एक क्रिश्चियन की वहां पर क्या उनका होता है चार, तो वहां का बिशप फेज होते हैं उनके, और बड़े धुरंधर भी होते हैं। वो हिंदू धर्म की जितनी कमियां नहीं, उसको खुद खुद करके ला करके और वही सब जनता को समझा करके और हिंदुओं के विपरीत सनातन धर्म का खंडन कर, अरे तुम्हारा कृष्ण काला स्त्रियों के साथ में जो विचार करता था उसको नहीं करता है, ऐसे सब कंप्लेट छपवा करके और ऐसे नौकर सभा करके सब लोगों को समझाते हैं हिंदू धर्म में सब मूर्ख है, उनको कुछ नहीं मिला, यही सब पूछा। तो वो बिशप उस सभा में वो भी आया और एक वकील थे वहां के सीनियर, उस बिशप को ले आए जानबूझकर, और बड़ा तार्किक बिशप और आशा के भारतवर्ष में प्रचार करता था, तो वो भी वहां पर आया। जब सभा खत्म हो गई तो वो बिशप बैठा रहा, सब लोग तो संतुष्ट होकर के चले गए, दार्शनिक उनका विचार था, वो उस पर बोल रहे थे भाग। तो वो वकील उसको ले आया, वकील ने कहा जैसे आपसे ये दो चार प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो ये समझ गया ये वकील पहले से परिचित इनका था, वो कुछ गड़बड़ करेगा। तो ईसप ने इनसे पूछा ये आप लोग एक गैया चराता है और चरवाहे का काम करता है इस घर में, उसका भजन क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि बकरी से गाय श्रेष्ठ है। बकरी क्या करती है? वो थोड़ी सी दूध देती है, सारे सौ पैसे करती है। तो इसका जो चरवाहा था कौन? तो उनसे बहुत सिर्फ गैया का दूध, गैया का माता है, इसलिए गैया की सेवा करता था और जगत का। गैया को एक बच्चा होता है और बकरी को दो तीन चार पांच छह एक साथ मिलता, इसलिए ये प्रजापति है। और गाय के शरीर में समस्त देवता लोग निवास करते हैं, इसलिए हम लोग के आराध्य गांव का पालन करके जगत का पालन करने वाले हैं, इसलिए उनका भजन करते हैं। तो थोड़ा सा झेंक के फिर पूछे, अच्छा तो वो आप लोगों का इससे देश गोरा क्यों नहीं हुआ? गोरा काला क्या क्यों? और कतरा की झांसी काले को आप लोग इस बन रहे हैं? इन्होंने कहा ब्लैक इज नो कलर, यह अपराचित तत्व है, अवांग मन को गोचर, और जहां पर कोई जगत का कॉलर नहीं पहुंचता है और सब कॉलर को अपने अंदर रंग मिला लेता है, सफेद में काला रंग मिला दो तो काला रंग, पीला में भी काला मिला दो तो काला मिला दो, कहीं भी ये और इसके ऊपर में कोई रंग लगाओ तो वो नहीं लगेगा,
खाली कमरिया पर कड़ी लगेगा।
तो इसलिए हम लोग ऐसे उपास्य को करते हैं जिसका कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है और वो कोई कॉलर नहीं, ब्लैक इज नो कॉलर, इसलिए हम अपराकित जो भगवान का जो रूप है वो काला जैसा आप कहते हैं वो ऐसा नहीं, वो जैसे आंख की पुतली यदि सफेद हो तो कैसे लगेगी, बेकार की हो जाए। केस में सफेद, यहाँ पर केवल सफेद केस हो जाए तो उसका क्या मूल्य है। तो ये काला ऐसा है जो समस्त जगत को आलो देता है, इसलिए हम लोग ब्लैक इज नो कलर, अपराकृत कृष्ण का हम भजन करें। अच्छा तो ये कहते हैं, ये तो बतलाया, तो फिर आप लोग गौरचंद्र को उपास्य जो गौर बन है उनका क्यों करते हैं, तो कंठ में वृष्टि हो गया। यानी जो हेडगियर ये है, हेडगियर मैंने इसमें सात वर्ड लेटर है, विद्यो मैंने ये सात रंग वो जगत में होते हैं। विद्या में कौन कौन सा,
नील, असमिया, सोगुन,
अंग्रेजी, इंडिगो, हाँ, वायलेट, इंडिगो, वाइट, येलो,
वाइट,
येलो, और क्या क्या है,
ऑरेंज,
रेड, ये सब रंग है। इन सबको मिला दो तो वो गौर वर्ण हो जाता है। सबका रंग, जितना रंग है विश्व में सबको एक साथ मिलाओ तो गौर वर्ण हो जाता है। इसलिए हमारे गौरचंद्र जी हैं वो सब रंग माने राधा कृष्ण इत्यादि हैं, इन सब का मिला हुआ उनका ये विषय है। इसलिए हम लोग इसकी उपासना, जो जो प्रश्न किया है और इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न किए, सबका उत्तर ऐसा दिया, वकील तो एकदम चमत्कार हो गया। वाह, आप तो सचमुच में दार्शनिक विद्वान, नहीं तो ये लोग, इनको ऐसा पंडित नहीं मिलता। आप अपने देश में कहते हैं हिंदुस्तानी और इधर के लोग बेवकूफ होते हैं, इसलिए वहां पर ऐसा उद्यमी पक्षा एकदम चमत्कृत हो गया। इस तरह से जहां जहां उन्होंने अपने छोटे छोटे शिष्यों को जहां जहां पर भेजा, ऐसे विजय करके प्रचार इन लोगों ने किया। इसलिए कहा गया है जने जने शक्ति भरे,
ब्रह्मांड तरीके शक्ति भरे।
और प्रभुपाद जी के जाने के बाद में फिर वही लोग कुछ रहे तो देखा जाता है जैसे ऐसे ही। ये शक्ति प्रभुपाद की थी, जब आते हैं तो महाप्रभु जैसे इनके परिकर आते हैं, इनके परिकर भी वैसे ही असम में शक्ति संचेद करके पृथ्वी में हरि नाम का और भगवत भक्ति का सनातन धर्म का प्रचार करके। गौकिशोर दास बाबाजी महाराज 1915 में अप्रकट हुए। उस समय में गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज ने यह बतलाया था कि हमारा कुछ भजन नहीं हुआ, हमारा जन्म बेकार का गया। श्रीमती राधिका जी कहती हैं कि कृष्ण की मैंने सेवा कुछ नहीं की, जो निरंतर उनसे मिलते हैं, अभी आज तक हमने उनका दर्शन ही नहीं किया। भक्ति का ऐसा ही स्वभाव है, बहुत दीनता स्वाभाविक होती है, और जहां अहंकार अभिमान है तो समझे भक्ति का लेश नहीं है। तो गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज ने कहा कि हमारा जीवन दुखा गया, भगवान का भजन हमसे नहीं हुआ, क्यों भोजन करने में इधर उधर घूमने में हमने गवा दिया, इसलिए तुम लोग एक बात करना, मर जाऊं तो हमारे पैरों में रस्सी बांध करके नदी के गलियों गलियों में हमको भी फेंक करके ले जाना, और अंत में गंगा नदी में हमको हमारा शरीर, हम तो कह धाम की बुली तो हमारे शरीर में लग जाएगी। उन लोगों ने, बाबा जी जो थे वो अप्रकट हो गए, प्रभुपाद जी को अभी तक संवाद नहीं मिला था, उन्होंने लेकर के तैयारी की, नारियल की मोटी सी रस्सी खरीद ले आए और बाबा जी को पैर बांध दिया और बांध करके घर की गई। इतने में प्रभुपाद जी को खबर मिली, उस समय में प्रभुपाद जी सब ब्रह्मचारियों के साथ में हमारे गुरु जी भी उसमें थे, गुरु जी को और सब जितने थे, ये कुंज बाबू उनका नाम क्या था?
विद्याभूषण,
अनंत वास्तविक इत्यादि जितने सब ब्रह्मचारी थे अद्भुत। अब उनकी जब प्रभुपाद की सभा लगती थी ना, मानो देवराज की सभा लगती थी। सब लोग वहां पर तो सब लोगों को लेकर के नवदीप में आए। कुलिया ने देखा कि सब लोग तैयारी में हैं, इनको पैर बांध करके ले जाएं। तो ये करीब 50-60 या 100 ब्रह्मचारी सन्यासियों के साथ में आए, तो देख करके थोड़ा सा सहम गए, डर गए। और बात भी बात होने लगा, इन्होंने कहा कि ऐसा कदापि नहीं होगा, वो वैष्णव थे, हमारे गुरु हैं, तुम लोगों के गुरु नहीं। और वो लोग जानते थे हमारे गुरु हैं। उन्होंने कहा तुम लोग कोई भी उनका शिष्य नहीं है, मैं एकमात्र उनका इकलौता शिष्य हूँ, तुम लोग का अधिकार नहीं है जो उनके अंगुष्ठी अंकोश करते। उन्होंने दिनता से ऐसा कहा और उनको सचमुच तुम उनका पैर बांध करके गली गली में घुमाएगा और गंगा में डालेगा कि वो पवित्र हो जाए, जिनके पद से गंगा भी पवित्र होती है और उनको तुम लोग पवित्र कर देगा। वो तो सब समय धाम में रहते हैं, अभी भी धाम में है। झगड़ा विवाद होने लगा, मार्केट की नौबत आई, वहां के थाना दरोगा और सब लोग वहां उपस्थित हो गए, काफी लोग भी आ गए। उस समय में प्रभुपाद जी ने खड़े होकर के कहा, वो लोग झगड़ा का मेट मार्च करने की प्रतिक्रिया करने लगे। प्रभुपाद जी खड़े होकर के दंड लेकर के खड़े हो गए और बोले, यदि इनका सचमुच में मैं इनका एकमात्र शिष्य हूं, मैं जैसे ये बाल ब्रह्मचारी थे, मैं भी बाल ब्रह्मचारी, यदि कोई इनका कोई शिष्य हो जो आज तक जीवन में कभी भी विवाह शादी नहीं की हो, स्त्रियों के प्रति उनकी नजर न गई हो, तो उनके शरीर को स्पर्श कर और वह झूठ बोलेगा तो साथ ही साथ मारा जाएगा, मैं कहता हूं। यदि कोई ऐसा है, इसलिए इनका कोई ऐसा शिष्य हो जो बाल ब्रह्मचारी हो जन्म से ही, तो वो उनका शरीर स्पर्श कर। सब लोग एकदम थर्रा गए, कोई नहीं उठा। उसके बाद जैसे एक वर्ष के अंदर में जिसने कभी भी स्त्री चिंतन नहीं, स्त्री का स्मरण नहीं किया हो, वो आकर के इनका शरीर स्पर्श, कोई नहीं आया। और जैसे आज 15 दिन के अंदर में कभी ऐसा चिंतन नहीं किया हो, सत्य में भगवत भजन चिंतन किया हो, जैसे ये बाबा जी महाराज, तो इनका शरीर स्पर्श कर, और नहीं तो इनका ये सब फट जाएगा, मर जाएगा। कभी आज रात तक भी ऐसा कोई बाबा जी हो जो ऐसा नहीं किया हो, मन के द्वारा चिंतन है, वो उनको स्पर्श कोई नहीं। और जाकर उन्होंने कहा कि मैं यदि बाल ब्रह्मचारी हूं, जन्म से कभी मैंने स्त्री को देखा नहीं, चिंतन नहीं किया, देखना भी देखा भी नहीं, तो मैं इनको अपनी गोदी में लेकर के और ले जा बच्चा के साथ जाकर के उनको उठा लिया गोदी में, और ब्रह्मचारी सब मिल गए। अब ब्रह्मचारी सब मिल करके गंगा के किनारे लेकर के उन पर उनकी सुना, सब लोग जहां तहां भाग गए, पुलिस को कोई काम करने की जरूरत नहीं रही, ऐसे तेजस्वी हुए। कुछ दिनों के बाद में वहां 4-5 वर्ष रहा, गंगा में बाढ़ आई, उन्होंने गुरु जी को आदेश दिया कि बाबा जी महाराज की समाधि बहने वाली है, तुम उसको ले आओ मायापुर में राधा कुंड के तट पर उसकी स्थापना। बस ले आकर के मायापुर में, अभी यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड है, जिसके जिसको श्याम कुंड राधा कुंड मान करके प्रभुपाद जी भजन करते थे, और गिरिराज गोवर्धन वहां पर रख दिया। इस तरह से वहीं पर जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी स्वानंद सुखद कुंज राधा कुंड, और हमारे रूप सनातन जी ने जहाँ रहते थे वहां पर भी ऐसे ही कर दिया। तो श्याम कुंड राधा कुंड कदम के थे, कमाल के थे, और वहीं पर कुंज में बैठ करके भगवान का भजन करते, ऐसे ही उन्होंने उसी के किनारे लेकर के अपने हाथों से चुनाव उनकी समाधि। आज भी वहां पर उनकी समाधि है, चंद्रशेखर भवन। उन्होंने 1915 में वो गप हुए और 1918 में इन्होंने त्रिदंड संन्यास लिया, महाप्रभु जी ने संन्यास लिया, और एक दंड उनका था क्योंकि उस समय में गंजी सन्यासी उस आकार में कहीं था ही नहीं, वही सन्यास के ऊपर कहीं था सन्यास मुक्त हो गया और दक्षिण में था तो उन्होंने भगवत भजन के लिए निष्ठा के लिए वैसा लिया था। नित्यानंद प्रभु जी भी सन्यासी थे, कोई कहते हैं वो सन्यासी नहीं थे, नहीं सन्यासी थे क्योंकि अपना दंड उन्होंने तोड़ दिया था और महाप्रभु जी ने अपने हाथों से नवदीप नहीं गंगा में बहा दिया। भागवत में ऐसा भी था, पहले तो नित्यानंद को महाप्रभु जी तो सब लोग सन्यासी मानते थे तो वो धारा चल रही थी। हमारे भक्ति कल्प वृक्ष, प्रेम कल्प वृक्ष के मूल अंकुर हैं, उनके नौ शिष्य थे सन्यास, उनको उसका एक एक जड़, नौ जड़, एक जड़ होता है नीचे एकदम गहरा पानी के अंत तक पहुंचता है और वही पानी खींचता है और साइड में जो जाने वाली सब जो जड़ें हैं उसको पकड़ सके इधर से इधर से इधर से उधर से उसको साइड। तो भक्ति का मूल तो वहीं से माधवेन्द्रपुरी बार और चारों तरफ नौ जो जड़ें निकली वही परमानंदपुरी, ईश्वरपुरी, रंगपुरी और तो ये लोग नौ भक्ति के ये जड़े थे। वो सभी सन्यासी हैं, एक भी गृहस्थी सभी लोग सन्यासी। नित्यानंद प्रभु जी से स्वरूप दामोदर जी सन्यासी थे, सब लोग महाप्रभु आने के बाद में पुरी में सब लोग एकत्रित हो गए। अब उन्होंने कहा जैसे मैंने संन्यास किस लिए लिया है, केवल मुकुंद निष्ठा के लिए, संसार वाले अपसंग नहीं करेंगे, संसार को त्याग करने के लिए बस। इस तरह से हमारे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जी उन्होंने संन्यास भी लिया, किंतु संन्यास के भी गुरु हैं। इसलिए नहीं लिया कि महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु स्वरूप दामोदर इत्यादि जिस पेज को ले रहे हैं हम उसको अपवित्र नहीं करेंगे, इस भावना से श्रद्धा के लिए नहीं लिया। हमारे इस महाप्रभु पुरुष ने देखा हर उस सनातन जिस पेज को लिए हैं परमहंस वेद हम ऐसे योग्य नहीं है, वो वर्णाश्रम से अतीत वो है, हम तो वर्णाश्रम के अधीन उनके दासों के दास के दास हो सकते हैं और इस साधारण रूप में सन्यासी और ब्रह्मचारी का ही रूप लेंगे। और सब लोगों की भजन करने के लिए योग्य नहीं, पहले जैसा भी सन्यास होता हो गोपी भाव के लिए नहीं था। आजकल का सन्यास क्या है, मैं गोपियों के भाव को गुरु जी ये भाव के इसलिए भजन करने के लिए अपनों का निष्ठा के लिए भी और इसके लिए। इसलिए इन्होंने सोचा कि अब इसको नए सिरे से विद्वान व्यक्तियों में, प्रतिष्ठित व्यक्तियों में महाप्रभु की विचारधारा को प्रचारित करने के लिए बाबा जी देश के द्वारा नहीं होगा, इसको सभी लोग बना कर नीच दृष्टि से देखते हैं, ये सब खड़े ब्रह्मचारी कुछ जानते नहीं, बस कोई मर गया तो ये मृदंग और केताल के साथ में जाकर के करते अस्त्र प्रहर करते हैं पैसे लेकर। शुद्ध भगवत भजन का कोई भाव नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी ने पुनः से वैष्णव धर्म की को प्रचारित करने के लिए उन्होंने संन्यास देना त्रिदंड। स्वयं उन्होंने रामानुज संप्रदाय में त्रिदंड है उसी के अनुसार उन्होंने त्रिदंड वेद धारण किया। समस्त ब्रह्मचारियों को जो अच्छे अच्छे वक्ता हैं और भजन कराए हैं उनको संन्यास का वेद और प्रचार बाबा जी का वेद उनको दिया जो केवल अथर्व है उसे जानते नहीं है, भजन करना चाहते हैं तो उनको बाबा जी दो चार को दिए, बाकी सब लोगों को जो तेजस्वी हैं प्रचार कर सकते हैं भजन भी कर सकते हैं हजारों लोगों को भजन करा सकते हैं उनको आजकल कुछ विकृत हो रहा है, जिनको कफ का कार्य नहीं ज्ञान भजन का राज्य का कफ बढ़ा ये नहीं कुछ जानते नहीं, वो लोग सब सन्यासी उनको दे दिए। और आजकल वही लोग परस्पर झगड़ा करके बर्दाश्त करते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति सन्यासी होकर के प्रचार करे ये तो ऐसा नहीं है, इसलिए प्रभु का आत्मा नहीं चाह रहे। इसलिए बहुत जल्दी से प्रचार होने का कारण था समर्पित ब्रह्मचारी ये सब आए और उन्होंने नगर नगर गांव गांव सर्वत्र उन्होंने प्रचार कर रहा है, एक पैसा लेना नहीं। कल हमारे पास में यहाँ के चतुर्वेदी एक आए, बहुत बोलने वाला बोला था और वो सभी तो बोलने वाले होते ही हैं, तो कुछ पढ़ा लिखा था तो दोनों आए युवक थे, करीब 35-40 वर्ष के थे हमारे पास में। जो बोल रहे थे हमने भाई बुलाओ हमारा दरवाजा खोल दो, तो वो लोग आ गए बैठे। मैंने कूद करके खड़े होकर के उनका ये आशीर्वादन करके उनको बैठाया बड़े प्रेम से, कैसे आपका दर्शन हुआ, कैसे दर्शन उनको दिया आप लोगों ने। बोले जी आजकल हमारा समाज बिगड़ गया है, मुसलमानों को लेकर के बजाते हैं सब जनेऊ कनेऊ सब, इसमें हम चाहते हैं कि यहाँ से वैष्णव लोग चलें और हमारे लड़के का जनेऊ होगा उसमें चल करके कीर्तन करें ठाकुर, हमारी पुरानी गौरव बहुत। लेक्चर दिया इधर उधर का सब लेक्चर करने के बाद मैंने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, उम्र तो 40-45 वर्ष की, 40-45 वर्ष से तो अभी हमारी 50 वर्ष हो गया यही मथुरा में। तुम्हारे जितने बड़े बड़े चौबे लोग हैं मनोहर लाल शास्त्री हैं विजय लाल शास्त्री वासुदेव चतुर्वेदी इतने मुद्भिन्न विद्वान भी, देखो हम लोगों को ये सब बच्चे आए हैं सब ग्रेजुएट बच्चे हैं, बड़े बड़े धनी घर के हैं, सब छोड़ करके आए हैं भजन करने आए हैं, भजनिया बनने के लिए नहीं। तो तुम लोग हम लोगों को बदलिया बनाना चाहता है, हम लोग को दो चार पैसे देकर आ रही, ये तो उतनी संपत्ति और विद्वता और नौकरी चाकरी सब छोड़ करके यहाँ पर आए। देखो तो कैसे सुंदर सुंदर किस्म है, विद्वान लड़के हैं ये सब। मैं यदि कभी दूंगा ये जाओ तो इनको बड़ा दुख, हमारे हमारे आदेश को ये जरूर पालूंगा, किन्तु मुझको देने में बहुत हृदय मेरा मिलता है। आप लोग कदर नहीं जानते हैं वैष्णव का, वैष्णव की स्थिति। तो आप लोग यही चाहते हैं कि हम लोग भजन छोड़ करके रोज रोज कहीं ना कहीं एक जनेऊ होगा, कहीं नहीं मरेंगे लोग और हम फल खाने लेकर के हम लोग घूमने दिन भर ये चाहते हैं। मैंने कहा कि हम लोग पैसे लेकर के सप्ताह पाठ अखंड पाठ और ये सब नहीं करते हैं, हमारे बच्चे नहीं करेंगे, ये लोग भजन करने के। और सब अच्छी तरह से सब समझा दिया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बिठाया। बजनिया आजकल बजने में 5,000 रुपया लगता है, बाजा करने 5,000 लगता है, तो तुम चाहते बिना पैसे के लिए बजनिया नहीं है, तो ये बताना चाहिए। ये घर बार छोड़ करके बड़े त्याग करके भगवान का भजन करने अंत में वो समझ सकते, ऐसे दिन रहता के तुम लोग भी भजन करना। विश्व एक तरफ में रहेगा हम अकेले रहेंगे किंतु भजन करेंगे दूसरों से करेंगे। प्रभुपाद के जितने भी शिष्य थे जैसे भी शिष्य आए भी वैसे ही ऐसे ऐसे अद्भुत सा बड़ी विद्वता विद्वती महिलाएं महिला और लड़के भी ऐसे तेजस्वी, तुम लोग भी ऐसे तेजस्वी बन करके भगवान का। तो बहुत बहुत श्रोदास अंत में उनकी समाधि वहां पर दी गई। फिर उन्होंने पत्रिकाएं निकाली कितनी भाषाओं में और सर्वत्र प्रचार किया, ये बच्चे सब ब्रह्मचारी हो। एक लकड़ी का बक्सा दे दिया चाबी ताला लगा करके और चाबी अपने पास में प्रभुपाद रखे और वो बेचारे ट्रेनों में कानों में बसों में बाजारों में हाथों में कह दिया था कि दो एक पैसे से अधिक मत लेना, फूल माधुरी की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा और उनसे कुछ कहना, ये भगवत भजन ही जगत का जीवन का मूल्य है। और मायापुर में आना या कलकत्ते में आना इसी तरह से थोड़े दिन कर डाले उन बच्चों के द्वारा, उन सन्यासियों के द्वारा, पत्रिका के माध्यम से चारों तरफ में कुछ दिनों के अंदर में ही उन्होंने 1921 में 18 में उन्होंने तिगंध संन्यास लिया। कलकत्ते में पहले उनका आश्रम था, उनके आश्रम में ये पहला आश्रम बना कलकत्ते में उल्टा डिंग और किराए के मकान में, और उसमें भक्ति प्रदीप्त महाराज जी, कुंज बिहारी विद्याभूषण जी और सब कुछ लोग गृहस्थ भक्त रहते थे। त्यागी तो कोई था नहीं उस समय। कुछ दिनों के बाद में एक नरहरी ब्रह्मचारी आए और गुरु जी आए, तो नरहरी प्रभु जी अर्चन करते थे और प्रभुपाद जी कांसर बजाते थे, भजन भक्त सब अवसर की और सब अर्चन के समय हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और इसके बाद में गुरु जी आए, गुरु जी को देख करके उस समय में 16-17 वर्ष के नौ जीवन उन्हीं उसी तरह से जड़ विद्या का प्रत्याग करके आए। चैतन्य से चामल के पदों को लेकर के और वही सब उस समय कॉलेज में चैतन्य से चामृत एम ए इत्यादि में वो सब पाठ के पुस्तक थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। आजकल तो रामायण इत्यादि कुछ रखते नहीं, पहले उस पर कांगता कुछ रखते थे अपने वो शादी पर, तो उसको पढ़ाने के लिए प्रोफेसर लोग आते थे बच्चों से, तो उसका अर्थ ठीक नहीं कर पाते। जुए स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण शक्ति भेदाभेद प्रकार। अब इसका अर्थ कोई क्या करेगा, गुरुमुख विद्या है ना, स्कूल कॉलेज में ये सब चीजें कहां से मिली, भेदाभेद भेद भी है अभेद भी है, ये कैसे बतलाएं। तटस्था शक्ति किसको कहते हैं, जीव का स्वरूप कहता है ये कैसे बतलाएं। कृष्ण अव्यय ज्ञान तत्व है, अव्यय ज्ञान कोई शब्द ही लोग सीखे, अव्यय ज्ञान माने जो कुछ है सब भगवान की शक्ति से, जो कुछ भी किस शक्ति से ये किस जगत, जड़ शक्ति से ये जड़ विश्व, और भगवान की एक तटस्थ शक्ति है जड़ भी नहीं है चेतन है, किंतु चेतन में खो जाने वाली है जड़ में खो जाने वाली है, ऐसे उसी से जीव। जीव ऐसा मत समझना है कि जीव तटस्था शक्ति से उत्पन्न है, ऐसा मत समझना, ये गलत हो जाएगा। कैसे समझना होगा, ऐसे समझना गीता में लिखा ममई वांसो जीव लोके जीव भूत, जीव हमारा अंश है, और भी शास्त्रों में लिखा है जीव भगवान का अंश है, और कहीं लिखा है तटस्था शक्ति से पैदा हुआ है। कौन सा ठीक है, जीव गोस्वामी ने इसका सामंजस्य किया, तटस्था शक्ति से जीव नहीं उत्पन्न होता, और भगवान का अंश है, भगवान का खंड नहीं हो सकता, वस्तु परिणाम नहीं है शक्ति परिणाम। तो भगवान ऐसे हैं सत्य आनंद स्वरूप, सत्य आनंद सर्वशक्तिमान है, अचिंत सर्वशक्तिमान है, रस के समुद्र है, उनके अंदर में सब जड़ जगत जीव जगत जो कुछ सब इंक्लूड उसी में करता है, और उनमें रहते हुए भी वो सब में वर्तमान है। तो भगवान ऐसे अचिंत शक्ति परायण हैं कि कभी कभी किसी शक्ति को छोड़ करके भी प्रकाशित हो सकते, जैसे सचित आनंद है ना, तो सचित आनंद तीनों को गुप्त कर दिया तब उसको कहते हैं निर्विशेष, भगवान का वो ज्योति है, अंगों की ज्योति। ये ज्योति कहां से निकलती है, जैसे हम अभी प्रकाश देखते हैं, प्रकाश कहां से आता है, सूर्य से, किंतु हम घर के भीतर में बैठे हैं, बाहर में सूर्य का प्रकाश है, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका गुण क्या है, ये बतलाना बहुत कठिन है, किंतु है सभी कुछ ज्योति। तो वैसे भगवान के अंग कांति का नाम, उसमें भगवान की सब चीज आनंद में से केवल चित शक्ति का आंशिक विशिष्ट प्रतिफलन है ब्रह्मा, उसको कहते हैं ब्रह्म। तो भगवान ने ऐसा किया कि यहां पर तीनों शक्तियों को हटा दिया और निशेष रूप में केवल प्रकाश के रूप में दिख पड़ रहा है, इसको कहा जाता है। भगवान कभी कभी ऐसा होता है जो अपने आनंद शक्ति को हटा करके केवल आंशिक रूप में चीत और आंशिक रूप में सब दोनों को, ये कौन सा रूप है, यही परमात्मा है, ये जीवों के हृदय आंशिक रूप में सब आंशिक रूप में चीत, अंग परिणाम की कल्पना की जाती है क्योंकि ये दो ही गुण आनंद रूप में नहीं है, तिरोही। कभी कभी सच्चिदानंद परिपूर्ण रूप में प्रकाशित करते हैं, ऐश्वर्य के चूड़ांत और माधुर्य का भी पूर्ण रूप में, तो उसको कहते हैं। जब तो केवल अढ़ाई रस अपना प्रकाशित करते हैं सच्चिदानंद, किंतु अढ़ाई रस ही, तब उनको कहते हैं। केवल वहां भयंकर जब प्रकाश करते हैं उसमें आनंद भी तिरोहित है और उसका प्रकाश नहीं है और सबका, तब उनको कहते हैं निशेष। वैसे भगवान का एक ऐसा समय है, ऐसा करते हैं जब उनका पूर्ण रूप में आनंद, पूर्ण रूप में सब और पूर्ण रूप में सीख, ये न रह करके आंशिक रूप में रहेगा और केवल तटस्था शक्ति से युक्त रहते हैं, जीव शक्ति से युक्त रहते हैं और सब शक्तियों को हटा देते हैं, और उसमें भगवान का जो अंश होता है केवल मात्र तटस्था शक्ति युक्त भगवान का, उसको कहते हैं। जब भगवान सच्चिदानंद होते हैं, संपूर्ण चित, संपूर्ण आनंद और संपूर्ण ज्ञान, सच्चिदानंद परिपूर्ण, उनका जब अंश होगा तो उनको कहते हैं स्वांश अवकाश, स्वांश स्व अंश माने भगवान का। जब अपने केवल किसी शक्ति को किसी जीव में प्रकाश करते हैं तो उसको कहते हैं गुणावता, आवेश अवकाश। और जब भगवान में केवल तटस्था शक्ति रहती है और सबको तिरोहित कर रखते हैं, हटा करके रख देते हैं और केवल तटस्था शक्ति से जुटते हैं, उस समय उनका जो अंश रहता है वही जीव है। ये दोनों बात इसमें रह गया, तटस्था शक्ति से भी हो गया और इधर भगवान का भी अंश हो गया। तटस्था शक्ति युक्त भगवान के अंश को अल्प परिमाण, अल्प परिमाण में आनंद है, अंत परिमाण में थोड़ा सा ज्ञान भी है और उसका स्वरूप भी है, इसलिए माया उसको ढक लेती है और बंध कर देती है। भगवान को कभी भी माया नहीं ढक सकती है क्योंकि उसमें पूर्ण प्रकाश है, इसलिए कृष्ण विधु चैतन्य है, जीव अणु चैतन्य, यही हम लोगों के संप्रदाय की विशेषता है। और उन्हीं का यह अंश होने के नाते भगवान से भेद भी है, इसलिए हम लोगों के सिद्धांत का नाम है अचिंत भेदा भेदवाद, प्रभुपाद ने इसका
सिद्धांत।
यदि प्रभुपाद जी नहीं आते तो बस निर्जन में बैठ करके वही हरे कृष्ण मैं गोपी हूं और उसके बाद में मर गया, बस इतना ही सब कुछ। किंतु इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार करके भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से और उनके उपदेश से पुनः भक्ति भगीरथ का उन्होंने सारे विश्व में उन्होंने प्रचार किया। थोड़े दिन के अंतर में यदि और 10-5 वर्ष रहते तो मैं जाने क्या होता, अपना समय हो गया। जैसे महाप्रभु के लिए अद्वैताचार्य ने संदेश भेजा, बाउल कहिया थे कहियो बाउल के बाजारे ना बिके चाउल और काजे ना आउल, महाप्रभु जी एक पागल अद्वैताचार्य जी पागल, एक पागल ने एक दूसरे पागल को बनाया जगत को पागल बनाने के लिए कृष्ण प्रेम में। जब इतना बाजार में चारों तरफ में प्रेम हो गया तब उसकी जरूरत नहीं हुई। तो कहते आउल मैंने आसू, अब व्यस्तता नहीं गई, अब जरूरत नहीं। बाजार में चावल है दुकान पर, किंतु लेने वाला नहीं है, सभी को घर में चावल भरती है, इसलिए अब दुकान को बंद कर देना ही अच्छा। तो वैसे ही इनका भी है। अंत में उन्होंने जिस दिन इनको जाने का हुआ, सब सन्यासी ब्रह्मचारी सब कलकत्ते में उपस्थित, उनको उपदेश क्या दिया, उपदेश दिया अंतिम उपदेश, तुम लोग भी सुनो और वैसे ही पालन करने की चेष्टा करना, हम लोगों को भी पालन करने से। जीवन में हमने भजन करने और कराने के लिए बहुत लोगों को कष्ट हमने दिया, बहुत से लोग हमको समझ नहीं पाए, इसलिए हमारी विरोधिता, उनके प्रिय लड़कों को जो सब प्रकार से योग्य गुणी सुंदर सुकांत थे, मैंने आकर्षण कर दिया, इसलिए वो सभी विरोधी हो। व्यवसायियों के धर्म के व्यवसाय वालों की रोटी रोजी बंद होने लगी, उनकी दुकान नहीं चलती थी, इसलिए वो हमारे विरुद्ध हो गए। इसी तरह से समाज का बहुत कुछ अंग जो हमारे विचारों को नहीं समझ सके, उन्होंने विरुद्धता की, किंतु एक न एक दिन वो समझेंगे कि मैंने जगत के कल्याण के लिए ऐसा किया है, मैं सत्य के प्रचार के लिए, भगवान के एक पैसा को बचाने के लिए मैं लाखों लोगों को कत्ल कर सकता हूं। इन चीजों को लोगों ने समझा नहीं, हमारी निष्ठा को नहीं समझा, इसलिए हमारे विरोधी, किंतु एक दिन आएगा जब समझ। एक बड़े खड़े विद्वान का नाम नवदीप के, वो सर्वदर्शन आचार्य, उनका नाम था गोपेंदु गोस्वामी, बहुत बड़े भारी विद्वान, गोपेंदु गोपिंदु गोपमे इंदु माने कृष्ण का, प्रभुपाद जी उनको, वो प्रभुपाद के विचारों का प्रतिवाद करते थे, वो स्मार्ट वैष्णव स्मार्ट मत को मानने वाले, शंकर जो वही है, भगवान वही है, कृष्ण वही है, राम वही है, दुर्गा जी वही है, और सब जीव ही ब्रह्म है, सब जितने जीव है सब ब्रह्म है, सर्वमिदं सर्वं खलिदं ब्रह्म। प्रभुपाद जी उनका विचार का खंडन करते, प्रभु विचार के वो खंडन करने की चेष्टा, इसलिए उनका नाम प्रभुपाद ने गोमेंदु रहा, गोमेंदु माने गोम, इंदु भगवत भक्ति से कोई संबंध नहीं, नाम करने में बड़े तेज थे वो प्रभुपाद जी, जबकि प्रभुपाद जी अप्रकट हो गए तो नवदीप ने आस पास में बहुत सबसे बड़ा भारी विद्वान, तो गुरु जी ने एक बार परिक्रमा के समय में उनको बुलाया आवेदन कर, तो वो आए, बहुत उम्र की थी उनकी, हम लोग के भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे सब सन्यासी लोग थे, जहां पर हम लोग बैठते हैं वहां पर वहीं पर सबको बैठाया गया। तो वो भाषण उनको देने के लिए गुरु जी ने कहा, वो भाषण देने लगे, तो कहा जी से हम लोग प्रभुपाद के जीवित समय में जब तक वो थे हम लोग उनकी महिमा नहीं, अब हम लोग विचार करके देखते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा था उन्होंने सब ठीक कहा था, हम लोगों ने उनका विरोध किया ये भगवान की इच्छा से हुआ, हम विरोध नहीं करते तो इतना प्रचार नहीं होता, इसलिए भगवान नहीं हमसे विरोध उनका किराया, किंतु हम अब समझते हैं कि उन्होंने जो कुछ भक्ति का प्रचार किया है वो शास्त्र का विचार था, हम लोगों ने ऐसा कर, ये उनके शिष्य हैं भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी, उनके सत्य शिष्य हैं, अभी तक कोई प्रमाण नहीं था ये मायापुर नदिया उधर में, इन्होंने अब प्रमाण कर दिया ये कुलिया जीव है, क्यों कोल दे को उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया, इनकी बुद्धि को मैं बलिहारी जाता हूं, कोई इसको कुलदीप नहीं कहता था, उसको नवदीप मानते थे, और उधर वाले को मायापुर नहीं मानते हैं नवदीप वाले सर, इन्होंने इन्होंने पक्की व्यवस्था कर दी, और मायापुर में यहाँ पर उन्होंने कुलदीप की स्थापना कर दी और कुलदीप को बैठा दिया, और यहाँ पर बैठ करके हम लोग की छाती पर प्रचार करते हैं मायापुर इस बार में इस बार को अपराध बन गया, अंत में बहुत दुख के साथ में ये उसने कहा था ये प्रभुपाद को हम लोग समझ नहीं सके, एक न एक दिन समझेंगे प्रभुपाद जी ने कहा था। अब सब लोग समझते हैं कि हाँ प्रभुपाद जी अति मत्स्य चरित्र के महापुरुष, वो जब नहीं आते आज विश्व में महापुरुष जी का यह प्रचार हमने हम लोग भी ये सब बातें नहीं सुनते भगवत भजन की बात। ये प्रभुपाद ने थोड़े दिनों के अंदर में पत्रिका के माध्यम से अपने सन्यासी ब्रह्मचारियों के माध्यम से अपने प्रचार के माध्यम से वो कहते थे ये मृदंग होता है ना, मृदंग भी कीर्तन में सहायक है किंतु बृहत मृदंग जिसका स्वर विश्व में सर्वत्र गूंजता है ये बृहत मृदंग एक है इसके माध्यम से प्रचार इसके द्वारा सब देशों विदेशों में अपने प्रचारक भेज करके धाम की परिक्रमा उन्होंने की। भक्ति विनोद ठाकुर ने धाम परिक्रमा लिखा प्रचार नहीं किया और एक सबसे बड़ा काम किया ऊपर बंदर है सर एक बड़ा काम किया जो सनातन गोस्वामी नहीं कर सके जी गोस्वामी नहीं कर सके पीछे के आचार्य लोग नहीं कर सके भक्ति विनोद ठाकुर भी समाज के दर्द मारे उसका प्रचलन नहीं किया। वो काम क्या है यदि शूद्र भी भगवान का भजन करता है तो उसको जो वो ब्राह्मण ही है। दूसरी बात स्त्रियां पहले फलग्राम की पूजा नहीं कर सकती थी भले ही उनकी दीक्षा हो वो टाइम लोग देते थे और उनका हंसा भी नहीं खाते थे। इन्होंने कहा जो हरिभक्ति विलास में ऐसा लिखा है और भगवान का भजन करने वाला उपवैत ग्रहण करके ब्रह्म होगा वो भजन कर सकता है इसलिए भी सालों ग्राम साल किला सेवा कर उन्होंने दीक्षा दे करके और उनको योग्य बना करके और ये संसार को दिखलाया। इसी का सबसे विरोध उस समय में हुआ एक समय की बात है उनके एक शिष्य थे गृहस्थ उनका नाम था सनातन दासाधिकारी हमारे नारायण प्रभु आते हैं उनके पिता वो भी लंबे चौड़े बड़े सुंदर सुकाम पढ़े लिखे तो उसने नहीं सिर्फ बड़े वो उनके साथ में रहते थे नैनी महाराज जी के साथ में तो वो उनकी लड़की की शादी तो वो तो जाकर के अपना गृहस्थ वैष्णव थे हमारे उनको भी हो गई था शादी तय हो गई कल बारात आने वाली है सब सामान खरीद लिया गया कल लड़की की शादी गांव वालों ने सब ने मिल करके कहा अरे ये तो जनेऊ पहनता है और हरि नाम करता है और मांस मछली हम जो खाते हैं नहीं खाता और हमारे बीड़ी सिगरेट या वो गुटखा होता है ये नहीं खाता है इसलिए हमारे समाज से ये बहिर्भूत है इसको समाज के किनारे हम लोगों ने कर दिया है इसका चुआ पानी हम नहीं पीते क्योंकि ये हुक्का नहीं पीता है और अंडे या मछली नहीं खाता है इसलिए इसको हम लोगों ने जाति से बाहर कर दिया है और उसका विवाह को कटवा दिया। विवाह करने वो आया ही नहीं लड़का और न बारात आई उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर आम मीठे मीठे अच्छे अच्छे सब फल ले आए थे सब्जी ले आई थी मिठाई घर में बनी थी सब एकदम पूरी तैयारी थी। शाम हो गई तो पता लगा जैसे तो विवाह नहीं करेगा लड़के वाला सब ये बड़े दुखी हो गए घर में भी बड़ा सब लोगों को सांत्वना दी और शाम को ही वो सारा सामान बनवा करके गाड़ी से लगवा करके कलकत्ते में बाग बाजार मठ में प्रभुपाद जी के यहाँ पर कोई नहीं महाराज के साथ मराते थे उनको दिया और उन्होंने प्रभुपाद जी के सामने वहां पर जितने ब्रह्मचारी थे बड़े खुश हुए सनातन प्रभु आए हैं कभी आते हैं तो किसी को गमछा देते हैं काफी देते हैं किसी को छाता दे देते हैं किसी को गंजी देते हैं जो कोई जरूरत होती है वो आकर के सब ब्रह्मचारियों को देते थे और बड़े वो प्रसन्न ब्रह्मचारी रहते किसी चीज की जरूरत होती ना तो उस प्रभु अमर साधन में कतो लागे कौशा दिए ठीक नहीं दिए हमको ये कपड़ा नहीं है, धोती नहीं है, अच्छा ले आकर के सबको बांटते हैं। मैंने कहा जाए तो प्रभु जी ने बड़ा सुंदर सुंदर आम और मिठाई सब ले आई है और बांटने लगा मठ में, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए जा प्रभु जी आज इतना सब ले आए। तो प्रभुपाद ने नहीं महाराज से पूछा जैसे इतना जो लाया किस लिए लाया। तो मैंने कहा बड़े दुख की बात है, उसकी लड़की की शादी आज होने वाली थी और बारात नहीं आई, लोगों ने काट दिया कि ये तो जनेऊ पहनता है और भगवान का भजन करता है, मांस का खाता नहीं है और जो लोग की दीक्षा नहीं उनके हाथ का पानी भी नहीं पीता है, समाज से कोई संबंध नहीं रखता है, इसलिए उसकी शादी को पकड़वा दिया। बस आंख से लाल हो गई प्रभु बाद और उन्होंने कांपते कांपते कहा ऐसा समाज बहिर्मुख समाज ध्वंस हो जाए, ध्वंस हो ध्वंस हो, तीन बार कहा। यदि कल परसों में इसकी लड़की की शादी नहीं हुई तो मैं
जन्म लेकर
के उस लड़की से मैं शादी करूंगा। अब इनको सुन करके इनको बड़ा आनंद हुआ। दूसरे दिन सचमुच में वो लड़का, कोई एक बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का, धनी घर का, नौकरी करता था, वो उनके घर से जा रहा था। सुना जैसे इसकी लड़की की शादी को लोगों ने काट लिया है, उनके घर में आता तो सुना अरे आपकी लड़की की शादी करते तो हम मैं विवाह करूंगा, हमको जरूरत नहीं है माता पिता से पूछने के लिए, आज ही विवाह हमारा हो, बस घर में आकर के कुछ पैसा खर्च नहीं ऐसे तैसे उनकी शादी। और उसके बाद में धीरे धीरे कमला नहीं की बढ़ गया। इसके बाद में समाज ऐसा हो गया खत्म, वो समाज ही नहीं गया, समाज बंद हो गया, अब प्रतिवाद करने वाला कोई नहीं। जाते हैं उस गांव में कुछ कुछ लोग दो चार अपने नाम दे दिए किंतु